नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का पहला आर्टिकल ये है नेशनल सिक्योरिटी के, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। कल का ये आर्टिकल है, द हिंदू से लिया गया है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो दूसरा आर्टिकल है, ये डेप्यूटी स्पीकर जो उपसभापति होते हैं लोकसभा या जो हमारी विधानसभा के, उनके बारे में बात करता है। इनके से जुड़े हुए प्रावधान क्या है, इनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा तीसरा आर्टिकल है, वो बात कर रहा है कोविड वैक्सीन से रिलेटेड। जैसे कि आपने समाचार में सुना ही होगा कि 100 करोड़ वैक्सीन जो है ये एडमिनिस्टर करी जा चुकी है अभी तक, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बहुत लेट वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने के बावजूद भी हमने ये माइलस्टोन टच कर दिया है, तो इसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहें तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। पहले आर्टिकल की ओर, जो कि बात करता है वैक्सीनेशन के बारे में। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का मार्क जो है ये हम टच कर चुके हैं। 20 अक्टूबर के दिन भारत ने ये अचीवमेंट, ये माइलस्टोन टच किया है, जिसमें भारत ने 100 करोड़ डोसेज जो है कोविड वैक्सीन के ये एडमिनिस्टर करे हैं। तो इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है क्या है, आगे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना, किस चीज़ों की ओर हमने और फोकस बनाना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में 93.89 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन है, उनमें से 29.5% पॉपुलेशन 100% वैक्सीनेटेड हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें कि 2021 तक, ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 2021 के अंत तक, मतलब दिसंबर महीने तक, करीब 70-80% एडल्ट जो है ये फुली वैक्सीनेटेड होंगे। उसके अलावा 18 वर्ष से जो कम आयु वर्ग है हमारे देश में, उनके लिए भी वैक्सीनेशन के अप्रूवल मिलने शुरू हो चुके हैं। कोवैक्सीन के द्वारा भी ट्रायल शुरू हो गए हैं, और ये बच्चों के लिए भी, जो 18 वर्ष से कम है उनके लिए भी वैक्सीन दी जाएंगी। उसके अलावा जाइडस सीडला जो है, ये वैक्सीन भी बच्चों के लिए, वैक्सीनेशन के लिए इसे अप्रूवल मिल चुका है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जिन्हें जनवरी और फरवरी में 2021 में कोविड वैक्सीन लगी थी, मतलब जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगी थी, इन्हें अब बूस्टर डोज देने की तैयारी भी सरकार कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया इस आर्टिकल में कि सरकार को कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं इन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन हैज़ रीओपन द गेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि वैक्सीनेशन के चलते ही सरकार ने कोविड नियमों में थोड़ी यहाँ पे लचीलापन दिया है, उसके चलते हुए हमारी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, लगभग वो सारी आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर भारत ऑलरेडी डेल्टा वेरियंट से जूझ चुका है, इसका सामना कर चुका है, जिसके चलते हुए जो वर्स्ट फॉर्म था कोविड का, ये हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। मतलब हम वर्स्ट फॉर्म से जा चुके हैं, अब हमारे पास में जो रास्ता है ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, जो कि हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी 31.4% जो पॉपुलेशन है ये 18 वर्ष से कम है, जिनको अभी तक वैक्सीनेशन जो है प्रभावी रूप से शुरू नहीं हुआ है, तो इस आयु वर्ग पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा क्या रीज़न है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए 100 करोड़ का मार्क, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया वो कंट्री बन गई है जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है। भारत के अलावा केवल चीन ही है जिसने ये 100 करोड़ का मार्क टच किया है। उसके अलावा अगर भारत की स्थिति हम देखें तो मिड जनवरी में भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चालू हुआ है। उसके अलावा एक और समस्या ये कि वैक्सीनेशन का रॉ मटेरियल कम होने के बावजूद भी हमने ये मार्क बहुत जल्दी से अचीव किया है, लेकिन जो हमारी बच्ची हुई पॉपुलेशन है उसे भी वैक्सीनेट करना उतना ही ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर भी हम ध्यान दें। उसके अलावा अगर प्रेजेंट पेस अगर हम देखें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हमको ये पता चलती है, द प्रेजेंट पेस ऑफ डोसेस रन समवेयर बिटवीन 20-60 लाख एवरी डे, मतलब हर दिन यहाँ पर 20-60 लाख तक लोगों को वैक्सीनेशन की डोसेस दिए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है। चलिए अगला जो आर्टिकल है, जो कि कल के न्यूज़पेपर से लिया गया है, तो सबसे पहला आर्टिकल बात करता है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लास्ट टू डिकेट ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी अपने आप में काफ़ी आधुनिक है, जितने बदलाव हमें इस सेंचुरी में देखने को मिले उससे पहले हमें कभी देखने को नहीं मिले थे। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा जो नीति है, इसमें काफ़ी बड़े बदलाव हमें पिछले कुछ समय में देखने को मिले हैं। और उनमें से एक बड़ा बदलाव ये है, बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अभी साइबर अटैक्स जो कि वर्चुअल माध्यम से होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शस्त्र, एक बहुत बड़ा वेपन बन चुका है जो कि गरीब से गरीब देश के पास में भी मौजूद है। तो अगर हम भारत में देखें तो हमको किस तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी साइबर टेररिज्म को लेकर शेप करनी चाहिए और क्यों इसकी ज़रूरत है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइबर वॉरफेयर जो है ये GDP पे भी डिपेंड नहीं रहता है, ना ही उस देश की इनकम या दूसरी कैपेबिलिटीज़ पर। जैसे अगर उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उत्तर कोरिया जो है, उत्तर कोरिया बहुत छोटा सा देश है, GDP बिल्कुल बड़ा नहीं है और ना ही ये इतना संपन्न देश माना जाता है, लेकिन इनके पास में साइबर वॉरफेयर के लिए अच्छे खासे वेपन्स मौजूद है, जिसके चलते ये बड़े से बड़े देश को, बड़े से बड़े विकसित देश या अर्थव्यवस्था को हिला के रख सकता है। तो ये साइबर वॉरफेयर ऐसी चीज़ है जो कि GDP या आर्थिक स्थिति पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता है। जिस तरीके से अगर हम पास्ट में देखें, हम पिछली शताब्दी में देखें, तो जो देश जितना संपन्न है उसके पास में उतना ज़्यादा वॉरफेयर होता है, लेकिन साइबर वॉरफेयर में ये उस मानक पर, उस स्थिति में खरा नहीं उतरता। यहाँ पर साइबर वॉरफेयर और इकोनॉमिक कंडीशन का कोई भी रिलेशन नहीं देखने को मिलता है अगर आज की स्थिति में हम देखें तो। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अभी बहुत से चेंजेस लाए गए, इसमें ड्रोन्स, रोबोट, सैटेलाइट और AI को जो है कवर किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें, ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस को भी सम्मिलित करने की बात की गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बायलेटरल साइबर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है कि मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन हुआ था, तो इसके पीछे बताया गया था कि चाइना का बड़ा रोल है, चाइना के साइबर अटैक के कारण ही मुंबई में ये स्थिति देखने को मिली थी। साइबर अटैक के चलते हुए मुंबई कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में जा चुकी थी, जिसके चलते हुए काफ़ी नुकसान हुआ था। तो सेना के द्वारा जो युद्धों में जितना आर्थिक नुकसान नहीं होता है, इस तरीके के वॉरफेयर में उससे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी विल हैव टू लिस्ट डाउन द असेट दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड पॉसिबल ओपोनेंट्स हु कुड अटैक द सेम। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत है कि हमें उन असेट्स को लिस्ट आउट करने की ज़रूरत है जो कि जिन पर साइबर अटैक हो सकता है और जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कहाँ से हमें साइबर अटैक और किस माध्यम से हमें साइबर अटैक हो सकता है, इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है और इसके बारे में भी हमें तैयारी करके रखना ज़रूरी है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक बार वो नुकसान हो गया तो उसको पूर्ण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा। उसके अलावा ऑल्सो द पैंडेमिक हैज़ ड्रिवन द इकोनॉमिक्स टू ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर। पहले ही पैंडेमिक के चलते हुए हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, एक आपदा की ओर बढ़ चुकी है, और अगर उसमें साइबर अटैक होता है तो स्थिति बद से बदतर करने के लिए काफ़ी होगा। उसके अलावा NSP में कुछ न्यू प्रायोरिटीज़ बताई गई है, जैसे सी वाटर, इम्यूनिटी मेडिकेशन, हाइड्रोजन फ्यूल्स, थोरियम से न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करना, एंटी कंप्यूटर वायरसेस तैयार करना, ये सारी चीज़ें भी NSP जो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। उसके अलावा एजेंडा शैल बी क्रिटिकल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इमर्जिंग इन साइबर स्पेस। तो यहाँ पे साइबर स्पेस में भी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रौद्योगिकी को तैयार करने की आवश्यकता है। उसके अलावा मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ हो रही है, इसके चलते हुए आज के स्थिति में अगर हम देखें तो आज के जगत में कोई किसी का उस तरीके से अलाइज नहीं है या दोस्त नहीं है जिस प्रकार से पहले हुआ करता था, ना ही हम किसी को परमानेंट दुश्मन कह सकते। तो अभी जो राजनीतिक स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे बात आती है कि NSP में हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन के और भी ध्यान देना चाहिए, FD इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके अलावा जो लोन इंटरेस्ट रेट है ये कम करने की आवश्यकता है, जिसके चलते हुए लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा अदर वे ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है इनको और इंसेंटिवाइज किया जाए, जिसके चलते हुए डिमांड में बढ़ोतरी आई। उसके अलावा प्रिंटिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी टू कॉम्बेट डिमांड शॉर्टेज कुड बी अ सॉल्यूशन फॉर काउंटर टैक्सेशन। तो टैक्सेशन कम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मनी जो है ये प्रिंट करने की आवश्यकता है। उसके अलावा द एम विल बी टू मिनिमाइज द इंटर सेक्टोरल इम्पैक्ट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स एट टाइम ऑफ क्राइसिस। तो टाइम ऑफ क्राइसिस के टाइम पे हमारे पास में हमेशा एक बैकअप प्लान रहना चाहिए, एक मिनिमम इंटर सेक्टोरल इम्पैक्ट रहना चाहिए, जिससे रिसोर्सेज अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे पास में रिसोर्सेज कम ना हो, इस और ध्यान देना चाहिए। चलिए अंतिम आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि डेप्यूटी स्पीकर जो उपसभापति होते हैं लोकसभा और विधानसभाओं में, उनके बारे में बात करता है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा है यहाँ पे न्यू डेप्यूटी स्पीकर का नामांकन यहाँ पे चयन हुआ है। ये डेप्यूटी स्पीकर बने हैं नितिन अग्रवाल, जो कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे 2017 में जीते थे। उसके बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए। इन्होंने एसपी छोड़ के समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे इनके एंटी डिफेक्शन के बाद में ये मामला गया स्पीकर के पास में। स्पीकर ने एंटी डिफेक्शन का जो मामला था ये रद्द कर दिया और इनकी सदस्यता बरकरार रखी है और इनको अभी भी एसपी का मेंबर माना गया है। और इसी बीच यहाँ पर बीजेपी ने जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके मेजॉरिटी होने के चलते हुए उन्होंने नितिन अग्रवाल को यहाँ पर समाजवादी यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर जो है वो चयनित करके दिया है। सिर्फ कुछ ही महीने शेष है उत्तर प्रदेश इलेक्शन को, उसके बावजूद भी ये चयन किया गया। तो अपने आप में काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए कि स्पीकर ने ये जो कदम उठाया है इसके पीछे क्या कारण है और ये कितना न्याय संगत है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये हो जाता है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये तो रिसेंट मुद्दा है, लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे देश का जो कानून है वो क्या कहता है इस बारे में। तो हमारे देश का कानून में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने की आवश्यकता है आर्टिकल 93 और 178। आर्टिकल 93 और 178 जो है वो डेप्यूटी स्पीकर की बात करता है, जो कि 98 आर्टिकल 98 बात करता है कि संसद में पार्लियामेंट में डेप्यूटी स्पीकर होने चाहिए। एज सून एज पॉसिबल स्पीकर के साथ में डेप्यूटी स्पीकर का भी इलेक्शन ज़रूरी है। वही 178 जो है वो विधानसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चयन की बात करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जिस प्रकार से वर्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन को लेकर अगर हम उस वर्डिंग को देखें तो अभी तक जो परंपरा चलती आई है उस हिसाब से जो पहला सीटिंग रहता है, जो पहला सेशन रहता है, उस पहले सेशन में ही यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर को चयनित करना ज़रूरी होता है, जिस तरीके की परंपरा चलती आ रही है हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये जो हमारी करंट लोकसभा है इसमें अभी आपको जैसे पता है हमारी स्पीकर तो ओम बिरला है, लेकिन अभी तक किसी को भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं चुना किया गया है हमारी लोकसभा में। तो यहाँ पर सेकंड सेशन तक भी लेट नहीं करना चाहिए यहाँ पर इलेक्शन के लिए या नाम चयनित करने के लिए, ये आर्टिकल में बताया गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आर्टिकल 95(1) जो है वो बताता है कि डेप्यूटी स्पीकर को वो सारी शक्तियाँ होती है जो कि स्पीकर के पास में होती है। अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो स्पीकर के पास जो सारी शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ जो है ये डेलीगेट हो जाती है डेप्यूटी स्पीकर को। मतलब डेप्यूटी स्पीकर का भी यह महत्व उतना ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा पैरा 5 जो है 10th शेड्यूल का, वो कहता है कि डेप्यूटी स्पीकर हैज़ टू लीव हिज एफिलेशन विद पॉलिटिकल पार्टी ऑन वर्च्यू ऑफ बींग इलेक्टेड एज डेप्यूटी स्पीकर। तो 10th शेड्यूल कहता है कि जब आप डेप्यूटी स्पीकर बन जाए तो उसके बाद में आपको जो पॉलिटिकल पार्टी है जिससे आप इलेक्ट होकर आए हैं, जिसके चुनाव चुनने पर आप चयनित होकर आए हैं, उसके तरफ से आपको बायस होना नहीं, आपको निष्पक्ष रहने की आवश्यकता है। लेकिन आप अगर पार्टी छोड़ते हैं, डिफेक्शन करते हैं, तो आप पर भी वही सेम कानून अप्लाई होगा जो किसी ऑर्डिनरी MLA या MP पे होता है। मतलब आप सदन की सदस्यता, सभा की सदस्यता खो देंगे। अब बात ये आती है कि भले ही आप फिर वापस आपकी पार्टी रिजॉइन करें, लेकिन आपका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो माना ही जाएगा और आप अपने पद से भी यहाँ से हाथ धो देंगे। उसके अलावा बात यह है कि जुडिशरी का इस बारे में यह क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक यह ऐसा कोई मामला गया नहीं है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर बताया है कि डिले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर जो है, अगर आप डिले करते हैं डेप्यूटी स्पीकर के अपॉइंटमेंट में तो ये वॉयलेशन होगा आर्टिकल 93 का। उसके अलावा ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक सेट नहीं किया गया है। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि एक्सपर्ट्स ओपाइन दैट कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू इंक्वायरी इनटू सब्जेक्ट। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना ये है कि इस प्रकार से किसी भी बात में स्पीकर जो है इनका
यहाँ पर अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि कोर्ट की दखलंदाजी या कोर्ट का कोई ओपिनियन यहाँ पे मायने नहीं रखता, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है, क्योंकि आर्टिकल 122(1) जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कोर्ट को प्रोसीजरल जो कंडक्ट है पार्लियामेंट की, इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए नट शेल में ये पूरा एक आर्टिकल था डिप्यूटी स्पीकर और उनकी पावर्स के संबंध में, और आज का हमारा जो विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट www.lawseekho.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।